नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
मित्र प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी इन दिनों भजन संहिता की पुस्तक से अध्ययन करते हुए नई बातों को सीखते हुए प्रभु में कुशल पूर्वक हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 61 से अपने अध्ययन को आरम्भ करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 61 निकाल लीजिए। आज का विषय है भक्त जन की पुकार और आश्वासन। इस भजन समूह में 61 से 68 का विषय है भक्तजन की पुकार एवं आश्वासन। इन 8 भजनों में आप भक्तजन की पुकार सुनते हैं तो आप परमेश्वर में उनके अडिग विश्वास को भी देखते हैं। इन भजनों में आप प्रभु यीशु को भी देखेंगे और अपने लिए महान सहायता भी पाएंगे। भजन संहिता 61 प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजे के साथ दाऊद का भजन है। यह दाऊद की हार्दिक प्रार्थना है। इसे गिटार जैसे बाजे पर बजाया जाता था। यह भजन रूपी प्रार्थना हमारी आज की प्रार्थनाओं से सर्वथा भिन्न है। हमारी प्रार्थनाएं तो घिसी पिटी सी सुनाई देती है। हम तो परमेश्वर को अपनी आवश्यकताओं की सूची पकड़ा देते हैं कि वह हमें सीधा सीधा आवश्यकताओं की वस्तुएं पकड़ा दे, वरन घर तक पहुंचा दे। हमारे इस व्यवहार ने आज प्रार्थना का विनाश ढा दिया है। मैं प्रार्थना के विन्यास, विधि और व्यवस्था के पक्ष में हूँ, परंतु मेरा मानना है कि प्रार्थना दिल से उभरना चाहिए। आप प्रार्थना में मन की पुकार को आज बहुत ही कम सुनते हैं, परंतु आप दाऊद की प्रार्थना में इसे अवश्य ही सुनेंगे। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 61 उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। लिखा है, हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। देखिए, दाऊद कहता है, मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। क्या आपको कभी यह बोध हुआ है कि आप पृथ्वी पर हैं और परमेश्वर दूर स्वर्ग में है? दाऊद को ऐसा अनुभव हो रहा था कि वह पृथ्वी की छोर पर है और परमेश्वर बहुत दूर है। वह निकट आने का प्रयास कर रहा था, वह उस चट्टान पर चढ़ने का यत्न कर रहा था जो उससे कहीं ऊंची है। मैं आज के प्रार्थना दृष्टिकोण के विरुद्ध इसलिए हूं कि वे यीशु को एक महान अभिनेता नहीं दर्शाते हैं। वह तो हमारे ही जैसा है, वह मुझसे बड़ी चट्टान नहीं है। मुझे अपने से बड़ी एक चट्टान के निकट जाने में अगुवाई की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10:4 पद में व्यक्त किया गया है कि प्रभु यीशु मुझसे बहुत ऊंचा है। यह प्रभु यीशु का कैसा अद्भुत चित्रण है। भजन संहिता 61:3 पद में लिखा है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। कैसा शांतिदायक चित्रण है। वह आंधी में शरण स्थान है, वह बैरियों से रक्षा करने में हमारा दृढ़ गढ़ है। भजन संहिता 61:4 पद में लिखा है, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। यहाँ एक बार फिर परमेश्वर के पंखों की चर्चा की गई है। हमने देखा है कि यीशु ने यरूशलेम को एक मुर्गी की नाई अपने पंखों तले लाना चाहा था। भजन 61:5 में लिखा है, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। दाऊद परमेश्वर से मन्नत मानता है। हम तो परमेश्वर से मांगते ही रहते हैं, उसे देना नहीं चाहते। आप परमेश्वर के लिए कुछ करने की प्रतिज्ञा क्यों नहीं करते? दाऊद ने वाचा बांधी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। भजन संहिता 61:6-7 पद में लिखा है, तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा, तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। यहाँ वह एक बार फिर दया की पुकार करता है। दाऊद को परमेश्वर की दया की आवश्यकता थी। मैं यह मानता हूं कि हम जितना अधिक परमेश्वर के निकट आते हैं, उतना ही अधिक हमें यह बोध होता है कि हम उसे अपने स्तर पर नहीं ला सकते, परंतु हम उसे ऊंचा उठाया हुआ, प्रतिष्ठित किया हुआ देखते हैं। तब हमारी दशा यशायाह की नाई होती है, जब उसने परमेश्वर को अपने सिंहासन पर विराजमान देखा। हमें अपने अशुद्धता और उसकी दया की आवश्यकता की बोध होने की आवश्यकता है, जिस प्रकार यशायाह को हुआ। भजन संहिता 61:8 पद में लिखा है, इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। मन्नत मानकर परमेश्वर के निकट आ जाएं, उसका स्तुति गान करें और वह आपकी मन्नत पूरी करने में सहायता करेगा। मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 61 समाप्त होता है और अब भजन 62 में हम देखते हैं, जिसका विषय है एकमात्र भजन। यह भजन एकमात्र भजन कहलाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि इसे छोड़ अन्य भजनों को भजन न माने। इसके अतिरिक्त भजन संहिता 149 भी इसी प्रकार का भजन है। यहाँ महत्वपूर्ण शब्द सचमुच, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, सचमुच वही मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है, सचमुच वे उसको ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, सचमुच वही मेरी चट्टान है। मेरे मित्रों, इस भजन का उपरिलेख है प्रधान बजाने वाले के लिए, दाऊद का भजन। यदुतून की राग पर, भजन 39 भी यदुतून की राग पर था। यदुतून मुख्य संगीतकारों में से एक था। भजनों में उसका नाम अनेक बार आया है। स्पष्ट है कि इस भजन के गाए जाते समय वह संगीत और गायन मंडली की अगुवाई करता था। यह एक साधारण भजन है, सरल विश्वास का भजन है। इसमें परमेश्वर का ऐसा सरल विश्वास और आस्था प्रकट है जैसा एक बच्चा अपने माता पिता में प्रकट करता है। पैरोन इस भजन के संबंध में हमें अत्यधिक महत्वपूर्ण बात कहता है। परमेश्वर में ऐसी श्रेष्ठता से व्यक्त विश्वास, हर्षोल्लासमय विजय का विश्वास, मनुष्य की व्यर्थता, मानवीय शक्ति और धन अति स्पष्ट, संकटों में शांत एवं अटल साहस, इस भजन से अधिक किसी और भजन में दुर्लभ ही पाए जाते हैं। और वे विचार एवं भाषा में उतने ही प्रभावी हैं जितनी इसकी पवित्रता प्रबल है और आनंददायक है। यद्यपि उपरिलेख हमें यह जानकारी नहीं देता, प्रथाओं से विदित होता है कि यह भजन दाऊद के दिल के सबसे बड़े दुख से उभरा था। उसके पुत्र अबशालोम का विरोध हम देखते हैं, दूसरा शामुएल की पुस्तक 15 अध्याय उसके 30 पद में। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांके हुए रोते हुए चढ़ गए। दाऊद के जीवन की यह सबसे बड़ी त्रासदी थी। यह उसका संकट और नाटकीय समय था। थॉमस पेयन ने मनुष्य की परख के समयों की चर्चा की है और यह समय वृद्ध राजा दाऊद पर आया था। दाऊद का पुत्र अबशालोम यरूशलेम में सेना लेकर आ रहा था। उसके प्रवेश के कारण निर्णय लेने का समय आया। कुछ दाऊद के पक्ष में थे तो कुछ अबशालोम के। यह वह समय था जब दाऊद को अपने अधिकारियों में देशभक्त और देशद्रोह की पहचान हुई। विश्वासघातियों और अन्यायियों की स्पष्ट पहचान देखी गई थी। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था अहितोपेल, जो बतशेबा के कारण दाऊद का संबंधी था, एक कुशाग्र बुद्धि का राजनीतिज्ञ, समझदार मनुष्य, अद्भुत युक्ति वाला और निर्भर करने के लिए दाऊद का परामर्शदाता। अहितोपेल दाऊद का साथ छोड़कर अबशालोम की ओर हो गया था, जिसके कारण दाऊद को बड़ा धक्का पहुंचा था। दूसरा, मपीबोशेत के सेवक जीवा ने दाऊद को सूचना दी कि उसका स्वामी योनातान का पुत्र भी, जिसे दाऊद ने अपनाया था, विश्वासघाती हो गया है। जब दाऊद नंगे पांव रोता हुआ यरूशलेम से पलायन कर रहा था, तब एक विन्यामिनी शिमी, जो राजा का भक्त था, धूल से भरा दाऊद पर पत्थर फेंकने लगा और उसे कोसने लगा। अब अबशालोम यरूशलेम में विजय यात्रा करता है और वही जन समूह जो दाऊद के लिए जय जयकार करता था, अब अबशालोम के लिए जय जयकार कर रहा था। सदियों पुरानी बात है कि इन्हीं की संतान प्रभु यीशु के लिए होशाना का नारा लगा रही थी और शीघ्र ही चिल्लाने लगी कि उसे क्रूस दो, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। दाऊद जन समूह के नारे की चुभन को समझता था और भजन संहिता 62 उस समय के दुराचरण पर दाऊद का भजन है। जी हाँ, यहाँ एक मनुष्य है जिसने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया हुआ है, एक मनुष्य जो आत्मिक मंडल में यात्रा कर रहा है, एक मनुष्य जो इस जीवन के तूफान, दुख और तनावों से ऊपर है। और जब हम इस अंधकारमय समय में, परीक्षाओं के समय, पराजय के समय, उसके मन से उभरे इस भजन को पढ़ते हैं, तब हम इसमें निराशा, भय, हताशा का लेश मात्र भी अंश न देखकर अचंभित होते हैं। भजनकार के मन में न तो द्वेष है और न ही कड़वाहट है। वह उद्धार का गीत गाता है, कृतज्ञता का गीत गाता है, आशा की साहित्यिक रचना है, दृढ़ विश्वास का गीत है, आस्था का लेख है, आश्चर्य का काम है। दाऊद ऐसे अंधकार के अनुभव में ऐसा हल्लेलुया गान कैसे लिख पाया? विश्वास की परख। भजन संहिता 62 उसके 1 पद में लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। निसंदेह उस युग में कट्टरपंथी कहते थे कि वह सब कुछ सहन करके विश्वास का प्रदर्शन कर सकता था, क्योंकि वह परमेश्वर का अभिषिक था। इस कारण परमेश्वर संपूर्ण परिस्थिति को संभाले हुए था। परंतु दाऊद ने कहा कि उसका जीवन परमेश्वर के हाथ में था और यही सबसे अच्छा था। दाऊद अकिंचन या मूढ़ मनुष्य की चीख पुकार के ऊपर हो चुका था। उसने दकियानुषी धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं किया था। जब अकिंचन मनुष्य चमत्कार की पुकार करता था, तब दाऊद परमेश्वर में विश्वास रखकर अंधकार में चलने की कसम खाता था। ओह, वह विश्वास, परमेश्वर द्वारा दिया गया विश्वास, जिसे मनुष्य पराजय कहता है, वह दाऊद के लिए विश्वास की परख थी। दाऊद यरूशलेम से बाहर जा रहा था, परंतु वह तब भी विजयी प्रतीत कर रहा था। भजन संहिता 62 के 2 पद में लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। महायाजक सादोक भी दाऊद के साथ आ गया था। वह विश्वास योग्य था और अपने साथ परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात वाचा का संदूक ले आया था। परंतु दाऊद उससे कहता है कि वह वाचा का संदूक नगर में लौटा ले जाए। दाऊद ने उससे कहा, दूसरा शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय के 25 और 26 पद में, यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाएगा, परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं, जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ वर्ताव करे। मेरे मित्रों, यदि संभव हो तो आप इस महान सत्य को स्पष्ट समझ लें कि यह आपके लिए जीवंत हो जाए। यहाँ एक मनुष्य है जो परमेश्वर को ऐसा समर्पित है कि वह वाचा के संदूक के चमत्कार के विचार की अपेक्षा केवल परमेश्वर को थामे हुए है, और सादोक से कहता है कि यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो वह यरूशलेम में अवश्य आने पाएगा, और यदि नहीं तो वह परमेश्वर के हाथ ही में है। वह परमेश्वर पर किसी भी काम के लिए बल डालने की अपेक्षा परमेश्वर की अगुवाई में रहने का संकल्प करता है, चाहे मार्ग कैसा भी क्यों ना हो। काश आज ऐसा ही जीवन मेरा और आपका होने पाए। भजन संहिता 62 उसके 3 पद में लिखा है, तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो, वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। दाऊद कहता है कि वे उस पर चढ़े आते हैं, वह तो झुकी हुई भीत और गिरते हुए बाड़े के समान है। वह कहता है, तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो। यहां उसके मन में मपीबोशेत के दास जीवा का विचार है, जिसने छल किया कि अपने स्वामी की झूठी बुराई करके दाऊद का अनुग्रह प्राप्त करे। साथ ही वह अहितोपेल के बारे में भी सोच रहा है, वह उसका घनिष्ठ मित्र ही नहीं सर्वबुद्धिमान परामर्शदाता भी था। दाऊद के अंधकार के समय वह बैरी से मिल गया। इस भजन में दाऊद भविष्यवाणी में अहितोपेल के द्वारा यहूदा इश्कोरियती को प्रकट कर रहा है। अहितोपेल दाऊद का विश्वास पात्र और निर्भर करने वाला मनुष्य था, परंतु दाऊद कहता है कि वे उस पर ऐसा धावा कर चुके हैं जैसे बाड़े पर विशाल जनसमूह। परंतु वह कहता है कि यदि यह परमेश्वर की इच्छा है तो सब ठीक है। भजन संहिता 62 उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। शिमी के कटु व्यवहार के प्रति दाऊद की प्रतिक्रिया को समझने का हम प्रयास करें। जब दाऊद सिंहासन पर था तब शिमी अन्य सब किनाए उसे दंडवत करता था, परंतु जब वह घृणा व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हुआ तब उसने दाऊद को कोसना और उन पर पत्थर फेंकना आरंभ कर दिया। यह वह समय था जब दाऊद यरूशलेम से पलायन कर रहा था। दाऊद का एक निष्ठावान सेवक था, सरूयाह का पुत्र अबिशै। उसने कहा, दूसरा शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय उसके 9 पद में, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए, मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। मेरे मित्रों, यदि आपको धर्मशास्त्र रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 19 पद का सजीव उदाहरण चाहिए, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, तो दाऊद के वचनों को सुने। दूसरा शमूएल 16 अध्याय उसके 10 पद में राजा ने कहा, सरूयाह के बेटों मुझे तुझसे क्या काम, वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया। दूसरे शब्दों में दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने उसे अनुमति दी है कि मुझे कोसे, अतः उसे कहने दो। क्या आपने कभी सोचा है मेरे मित्रों कि परमेश्वर ने किसी उद्देश्य विशेष के निमित्त आपके वैरी खड़े किए हैं। वह आपको परखना चाहता है कि आप एक अधिक उत्तम विश्वासी बने। आपके मार्ग में आने वाले वैरियों और कठिनाइयों से विस्मित न हो। वह आपके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं कर रहा है, वह इसलिए कि हम परमेश्वर पर इतना अधिक भरोसा करें कि ऐसे समय में रोए नहीं। विश्वास का समय, विश्वास का समय कब आता है? क्या यह वह समय है जब सूर्य चमक रहा हो और संकट का एक भी बादल ना हो? क्या यह वह समय है जब सब कुछ यथाउचित हो और आपके दृष्टिकोण पर धूल का कण ना हो? दाऊद का उत्तर है कि यह वह समय है जब परमेश्वर पर भरोसा रखने का सबसे अच्छा समय है, जब आपका जीवन संकट में हो। भजन संहिता 62 उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। यह प्रार्थना की बाइबल आधारित परिभाषा है। मुझे एक बार किसी ने कार्ड भेजा, उस पर एक संदेश था। मैंने उस संदेश को महत्वपूर्ण समझकर रख लिया। वह संदेश था, सच्ची प्रार्थना में पवित्र आत्मा विश्वासी में पुत्र के द्वारा पिता से बातें करता है। प्रार्थना यही है, यह सच्ची प्रार्थना है। मेरी आशा उसी से है। दाऊद कह रहा है कि वह व्यर्थ की प्रार्थना नहीं कर रहा है, सुनाने के लिए शब्दोच्चारण नहीं कर रहा है, परमेश्वर से कुछ करने की मांग नहीं कर रहा है। मेरी आशा उसी से है। दाऊद परमेश्वर से यह आशा रखता है कि वह उसके मन में वह विचार डाले जो उसे करना है, अतः वह सर्वोत्तम बात की प्रार्थना कर रहा है। मेरे मित्रों, मैं सोचने पर विवश हूं कि किसी धर्मी जन ने दाऊद से कहा होगा कि समस्या अगम है, अतः प्रार्थना सभा का आयोजन करें। इस पर दाऊद ने उससे कहा होगा कि उसका तो जीवन ही प्रार्थना का जीवन है, मेरी आशा उसी से है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में जब पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो उसके मन में यही उदाहरण रहा था। पौलुस के कहने का अर्थ यह नहीं था कि आप 24 घंटे घुटने टेककर परमेश्वर से प्रार्थना करने में लगे रहें। पौलुस निश्चय ही घुटनों पर प्रार्थना करने की अपेक्षा आपसे करता है, और फिर उस प्रार्थना की आशा में 24 घंटे रहने का उसका विचार है। दाऊद प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं करता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस भजन में प्रार्थना है ही नहीं, परंतु हम देखते हैं कि यह पूरा भजन ही प्रार्थना के वातावरण में है। वह परमेश्वर को समर्पित एक ऐसा मनुष्य है कि उसका जीवन और कार्य प्रार्थना के हैं। यह वृद्ध राजा यरूशलेम त्याग कर जा रहा है। हम उसकी सिसकियां सुनते हैं, परंतु जब हम उसके मन की गहराइयों को देखते हैं तब ये बाहरी बातें समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह परमेश्वर को समर्पित एक जन है और वह परिणाम की चिंता किए बिना परमेश्वर के साथ चलने को समर्पित है। कोई और होता तो कड़वाहट से भर जाता, परंतु दाऊद नहीं। वह यहाँ एक महान बात कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। भजन संहिता 62 के 6 पद में लिखा है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। यह इस भजन का प्रमुख सत्य है, यही दाऊद के जीवन का प्रमुख सत्य है। जी हाँ, यही उसके जीवन का बल था। इतिहास में अन्य पुरुषों से ऊंचा प्रकट होने के पीछे दाऊद के जीवन का कारण भी यही सत्य है। इसी कारण वह लंबे समय तक अपनी पहचान बनाने योग्य हुआ था, सचमुच वही मेरी चट्टान है। नए नियम में हम यीशु के शब्दों का अर्थ अब समझ सकते हैं, जब वह मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 44 पद में कहता है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रभु यीशु वह चट्टान है। वह दिन आने वाला है जब वह पत्थर जो हाथ से नहीं काटा गया इस पृथ्वी पर गिरेगा। आज आप और मैं इस पत्थर पर गिर सकते हैं और इस पर गिरने वालों का उद्धार होगा। एक स्त्री ने गवाही दी, आप जानते हैं कि मैं कभी कभी इस चट्टान पर खड़ी कांपने लगती हूँ, परंतु मेरे नीचे की यह चट्टान कभी नहीं कांपती है। क्या आप इस चट्टान पर खड़े हैं? इस चट्टान पर जो भी गिरेगा वह उद्धार पाएगा। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3:11 पद में पौलुस के कहने का अर्थ यही था, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। दाऊद ने कहा, सचमुच वह मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ। हे पलटने वाले सिंहासन, यरूशलेम कांप रहा है, मनुष्य मेरे विरुद्ध है, परंतु मैं चट्टान पर खड़ा हूँ। दाऊद ने यह महिमामय पाठ सीख लिया था। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम किस चट्टान पर खड़े हैं? क्या आज हम अपने परिस्थितियों या बीमारियों या तंगियों में उलझे हुए हैं? तो क्या आज हम दाऊद के समान परमेश्वर की ओर देख रहे हैं या किसी और को देख रहे हैं? आज मेरे लिए और आपके लिए समय है कि दाऊद के जीवन से उन महान प्रार्थना के विषयों को अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने आप को प्रभु के निकटता में लाएं और कहें, प्रभु मुझे भी दाऊद के समान प्रार्थना का हृदय और मन दे, सामर्थ्य दे। जी हाँ, इस बात को आप जान ले कि आपका चट्टान प्रभु यीशु है जो आपको हर एक परिस्थितियों से निकाल सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में दाऊद के दिए गए भजन के द्वारा आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Yeah.